ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दि सिल्वा के साथ वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट।
भारत के प्रधानमंत्री का ब्राजील का ये स्टेट विजिट 57 सालों के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेट विजिट से दोनों राष्ट्रों की मित्रता और सहयोग बढ़ेगा। व्यापार, रक्षा क्षेत्र, ईंधन, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रों का सहयोग बढ़ेगा। द्विपक्षीय बातचीत के बाद 4 MOU पर हस्ताक्षर होंगे। आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम, गुप्त वार्ता का आदान प्रदान, रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि अनुसंधान विषयों पर समझौता होने वाला है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, ब्राजीलिया।
इससे पहले श्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरो की यात्रा को बहुत ही उपयोगी और लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचेंगे। श्री मोदी नामीबिया की राष्ट्रपति नितुम्बो नंदी नेतवाह के साथ द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे और नामीबिया के संस्थापक तथा पहले राष्ट्रपति डॉ. सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी देंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 27 साल के अंतराल के बाद ये तीसरी नामीबिया यात्रा होगी। सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। देश में अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4,78,00,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं और 70,000 से ज्यादा पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गलियारे पर एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में 60 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य था, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 67 लाख पेड़ लगाए गए हैं, जो लक्ष्य का 112% है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने ये जानकारी दी।
आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। दूसरा सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थ को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा दुष्कर्म मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अपराधियों को ममता सरकार का संरक्षण मिल रहा है।
हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखा, FIR रजिस्टर हुई लड़की के हाथ की कंप्लेंट है और उसमें उन्होंने आरोपियों के बारे में जो नाम लिखे वो पुलिस ने इरेज कर दिए। पुलिस ने इरेज करने के बाद उसकी जगह कहीं J लिख दिया, कहीं M लिख दिया, कहीं M लिख दिया।
हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विंडो 31 जुलाई तक खुली रहेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 270 अंक बढ़कर 83,713 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंक की बढ़त के साथ 25,523 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।